वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद्भागवतम, श्रीमद्भागवतम छठा स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक 14 और 15। यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। अहम महेंद्रो निवृत्ति प्रचेताः सोमोऽग्निरीश पवनो विरञ्चिः आदित्य विश्वे वसवोऽथ साध्या मरुद्गणा रुद्रगणा ससिद्धाः अन्ये च ये विश्वसृजो मरेशा भृग्वादयो स्पृष्टरजस्तमस्काः यस्येहितं न विदुस्पृष्टमायः सत्त्वप्रधाना अपि किं ततोऽन्ये। अहम् मे यमराज महेन्द्रः इंद्र स्वर्ग का राजा निरिति ही निरिति प्रचेताः जल का नियंता वरुण सोमः चंद्रमा अग्नि ही अग्नि ईशः शिव पवनः पवनदेव विरंचि ही ब्रह्मा आदित्य सूर्य विश्वे विश्वासु वसवः आठो वसु अथ भी साध्याः देवतागण मरुद्गणाः वायु के स्वामी रुद्रगणाः शिव के अंश ससिद्धाः सिद्ध लोकों सिद्ध लोक के निवासियों सहित अन्ये अन्य च तथा ये जो विश्वसृजः मरीचि तथा विश्व मामलों के अन्य सृष्टा अमर ईशाः बृहस्पति जैसे देवता भृगु आदित्यः ने भृगु आद्यः भृगु इत्यादि ऋषिगण अस्पृष्ट अकलुषित रजः तमस्काः प्रकृति के निम्नतर गुणों रजगुण तथा तमोगुण यस्य जिसका इहितम कार्य न विदुः नहीं जानते स्पृष्ट मायः माया द्वारा मोहित सत्व प्रधानः मुख्य रूप से सतोगुणी अपि यद्यपि किम क्या कहा जाए ततः उनकी अपेक्षा अन्य अन्य अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। मैं यमराज स्वर्ग का राजा इंद्र निरिति वरुण चंद्र अग्नि शिव पवन ब्रह्मा सूर्य विश्वासु आठो वरुण साध्यगण मरुतगण सिद्धगण तथा मरीचि एवं अन्य ऋषिगण जो ब्रह्मांड के विभागीय कार्यकर्ताओं को चलाने में लगे रहते हैं बृहस्पति इत्यादि सर्वोत्तम देवतागण तथा भृगु आदि मुनिगण ये सभी प्रकृति के दो निम्न गुणों रजो तथा तमोगुण के प्रभाव से निश्चित रूप से मुक्त होते हैं। फिर भी यद्यपि हम सतुगुणी हैं तो भी हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों को नहीं समझ सकते तो फिर दूसरों के विषय में क्या कहा जाए जो मोह के अधीन होने से ईश्वर को जानने के लिए केवल मानसिक उहापोह करते हैं करते हो। कृपया दोहराइए मैं यमराज स्वर्ग का राजा इंद्र निरिति वरुण चंद्र अग्नि शिव पवन ब्रह्मा सूर्य विश्वासु आठो वरुण साध्यगण मरुतगण सिद्धगण तथा मरीचि एवं अन्य ऋषिगण जो ब्रह्मांड के विभागीय कार्यकर्ताओं को चलाने में लगे रहते हैं बृहस्पति इत्यादि सर्वोत्तम देवतागण तथा भृगु आदि मुनिगण ये सभी प्रकृति के दो निम्न गुणों रजो तथा तमोगुण के प्रभाव से निश्चित रूप से मुक्त होते हैं। फिर भी यद्यपि हम सतोगुणी हैं तो भी हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्य को नहीं समझ सकते तो फिर दूसरों के विषय में क्या कहा जाए जो मोह के अधीन होने से ईश्वर को जानने के लिए केवल मानसिक उहापोह करते हो। तात्पर्य इस विराट जगत के अंतर्गत मनुष्य तथा अन्य जीव प्रकृति के तीन गुणों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसे जीव जो प्रकृति के निम्न गुणों रजो तथा तमो गुणों द्वारा नियंत्रित होते हैं उनमें ईश्वर को समझ पाने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ तक कि जो सतोगुणी हैं तथा अनेक देवता तथा महान ऋषिगण जिसका वर्णन इन श्लोकों में हुआ है वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्य को नहीं समझ सकते। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को प्राप्त है वह सारे भौतिक गुणों से परे होता है। अतएव भगवान स्वयं कहते हैं कि उन्हें केवल वे ही भक्त समझ सकते हैं जो समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। भक्त्या माम अभिजानाति उनके अतिरिक्त कोई नहीं समझ सकता। जैसा कि श्रीमद् भागवत 1:9-16 में भीष्म देव ने महाराज युधिष्ठिर को कहा है न ह्यास करहिचित राजन पुमान वेद विधित्सितम यद्विज ज्ञान सया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपि। हे राजन कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की योजना को नहीं जान सकता यद्यपि बड़े बड़े दार्शनिक विषाद रूप से जिज्ञासा करते हैं किंतु वे भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः कोई भी व्यक्ति ईश्वर को शुष्क दार्शनिक ज्ञान द्वारा नहीं समझ सकता। निस्संदेह मानसिक उहापोह से मनुष्य मोहग्रस्त हो जाएगा मुह्यन्ति। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में की है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्त्वतः। हजारों पुरुषों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और सिद्धि में भी जो पहले सिद्ध हो चुके हैं उनमें से केवल वह जो भक्ति योग अपनाता है कृष्ण को समझ सकता है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चतदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवत का अजामिल उपाख्यान। तो ये तीसरा अध्याय यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। तो आप में से प्राय सब भक्त हर दिन सुन ही रहे, कुछ लोग हो सकता है डेली नहीं आ रहे हो, तो थोड़ा दो मिनट में संक्षेप में जो कहानी है। तो जैसा कि आप सुने कि पिछले अध्याय में कि जब यमदूत आए थे लेने के लिए अजामिल को, तो उस समय क्योंकि वो मरने के समय किसका नाम पुकारे, नारायण भगवान का नाम लिए, तो इसलिए विष्णु दूत भी वहां उपस्थित हो गए और विष्णु दूत और यमदूत में कुछ वार्तालाप हुआ और विष्णु दूतों ने उनको बताया कि एक बार भी अगर कोई भगवान का नाम ले ले तो वो पापी सारे पापों से मुक्त हो जाता है, इतने जितने पाप को कर भी नहीं सकता उतने पापों से वो मुक्त हो जाए अगर एक बार भी वो कृष्ण का नाम उच्चारण करे। लेकिन ये नाम अपराधयुक्त नाम नहीं होना चाहिए, शुद्ध नाम या नामाभास। तो अजामिल अपराधयुक्त नाम ने लिया था, वो नामाभास अपने बेटे को पुत्र को पुकार रहा था। तो इस तरह से अगर कोई एक बार नाम ले तो वो इतना पापों से मुक्त जितना वो पाप कर भी नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने बताया यमदूतों को कि आप इसको नहीं लेके जा सकते और विष्णु दूतों ने उनको मुक्त कर दिया, उनके रस्सियों को काट दिया। और उसके बाद अजामिल क्या किए, अजामिल को अंदर से एहसास हुआ कि अरे वो लगा कि मैं कितना पापी हूँ, मैं बचपन में सही रास्ते में था, भक्ति कर रहा था, लेकिन फिर ये वैश्या के संग से मेरी दुर्गति हो गई, मेरा पतन हो गया। तो बड़ा पश्चाताप किया अजामिल। फिर उन्होंने कहा कि देखो मेरा भाग्य है कि ये विष्णुदूत आए, मुझे एक और मौका दिए। तो प्रभुपाद जी ने किताब, प्रभुपाद जी के जो प्रवचन है छठे स्कंध पे, उस पे आधारित एक पुस्तक भी लिखी गई है, सेकेंड चांस, हिंदी में क्या नाम है उसका, मृत्यु की पराजय। तो इंग्लिश में उसका नाम है सेकेंड चांस। तो बड़ा अच्छा है कि अजामिल को दूसरा अवसर प्राप्त हुआ। तो कई बार हम जैसे बचपन में मैंने भी कहानी सुना था लेकिन दूसरा पार्ट नहीं सुना, पार्ट टू, हमें लगा बस विष्णु दूत आए और उसको भगवत धाम ले गए, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको एक और मौका मिला। विष्णु दूत केवल उनको यमराज जो यमदूतों के पासों से मुक्त किए, लेकिन फिर अजामिल कहां पे गए? हरिद्वार, गंगा द्वार शब्द है भागवत में, कि हरिद्वार जाके एक विष्णु के मंदिर में रहा वो, भगवान के मंदिर में, और वहां रह के उसने अपने जीवन को सफल किया और अच्छे से दृढ़ता पूर्वक भक्ति किया। और फिर वही विष्णु दोबारा आए और इस बार क्या लेके आए? विशेष विमान, स्वर्ण का विमान लेके आए, उनको बैठा के वैकुंठ लोग ले गए। तो ये दूसरा चीज कई बार लोगों को पता नहीं होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि तुरंत उनको कृष्ण प्रेम नहीं मिला, सारे पापों से मुक्त हो गए, लेकिन फिर वो शुद्ध नाम तक गए। तो तीन नाम जो है, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। तो भगवत धाम जाने के लिए शुद्ध नाम के स्तर पर आना पड़ेगा। तो फिर अजामिल भगवत धाम वापस गए, लेकिन इतने में जो यमदूत थे उनको बड़ा बुरा लगा, बोला अरे ये क्या, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हम तो सोचते थे हमारे स्वामी सबसे महान है यमराज, आज हमें परास्त होना पड़ा, आज हम लेके जा रहे थे अजामिल को, पता नहीं वो चार लोग कहां से आए और हमें परास्त करके और चले गए। तो यमराज के पास बड़े दुखी होके आए और बड़े, ये यमराज जी ये क्या है, हम तो सोचते थे आप ही हमारे स्वामी हैं, आपसे भी बड़ा कोई है क्या? तो उसके उत्तर में यमराज कहते हैं, पहले श्लोक में यमराज, अभी दो दिन पहले जो आपने सुना होगा, यमराज कहते हैं, मेरे प्रिय सेवकों, तुम लोगों ने मुझे सर्वोच्च स्वीकार किया है, किंतु मैं वास्तव में हूं नहीं, मैं सर्वोच्च नहीं हूं। मेरे ऊपर तथा इंद्र चंद्र सारे देवताओं के ऊपर एक परम स्वामी और नियंता है, यहां तक कि शिव जी ब्रह्मा जी ये भी श्रेष्ठ नहीं है, उनके ऊपर ये परम पुरुषोत्तम भगवान है जो कि सारे जगत को धारण किए हैं, जैसे कि वस्त्र लंबाई और चौड़ाई में ताने बाने के निर्माण करते हैं, जैसे कोई कपड़ा रहता है तो उसमें धागे रहते हैं, उसी प्रकार ये पूरे सृष्टि को धारण किए कौन? कृष्ण, जो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, तो कहते हैं वही परमेश्वर है, वही कृष्ण है, जैसा भगवान गीता में कहते हैं मत परतरम नान्यात किंचित अस्ति धनंजय मया मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणाई, कि मेरे में ही मेरे से मत परतरम, मेरे से बड़ा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुझ में ही स्थित है, जैसे कि माला धागे में माला स्थित, सूत्रे मणि गणाई व, जैसे हम कंठी माला पहने हैं तो जो तुलसी के मनके हैं ये इसका, इसको कौन धारण करता है? अंदर जो धागा, उसी प्रकार कृष्ण पूरे सृष्टि को अपने ऊपर धारण किए हैं। फिर कहते हैं जिस तरह बैलगाड़ी का चालक अपने बैलों को वश में करता है, उसी प्रकार कृष्ण पूरे समस्त जगत को वश में किए हैं। और फिर कहते हैं आज के श्लोक में, हे यमराज, उनको कोई नहीं समझ सकता, बड़े बड़े देवता, स्वर्ग के राजा इंद्र, शिव जी, ब्रह्मा जी, सिद्धलोक के निवासी, बड़े बड़े ऋषिगण, देवतागण, वसु, विश्ववासु, वरुण, मरुदगण, ये कोई कृष्ण को नहीं समझ सकता, जबकि ये लोग रजोगुण और तमोगुण से परे हैं। इस संसार में मुख्यतः सारे लोग रजोगुण तमोगुण के वश में रहते हैं, लेकिन उसमें तो यमराज कहे तो उनकी तो बात ही छोड़ दो, जो रजोगुण तमोगुण में है वो तो कभी कृष्ण को नहीं समझ सकते, लेकिन हम लोग जो महान देवता लोग हैं, हम लोग सत्वगुण में रहते हुए भी भगवान को नहीं समझ सकते, तो भला रजोगुण तमोगुण वाले लोग कैसे समझेंगे? ये आज का श्लोक है। तो मोह के अधीन होने से ईश्वर को जानने के लिए केवल मानसिक उहापोह करते हैं, जो केवल मेंटल स्पेकुलेशन, केवल मन मन में नाना प्रकार के अगर वो सिद्धांत मनोधारणा में रहते हैं तो वो कैसे भला समझेंगे? वो असंभव है कृष्ण को समझना, ही भगवान को समझना। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि कैसे कृष्ण को केवल एक भक्ति समझ सकता है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद् अनंतरम्। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान ये नहीं कहा कि कर्मी माम अभिजानाति या ज्ञानी माम अभिजानाति, नहीं, भक्त्या माम, भक्ति के द्वारा भक्त लोग ही मुझे जान पाते। तो भक्त लोग क्या रजोगुण तमोगुण में रहते हैं? बताइए, जो भक्ति करते हैं वो क्या रजोगुण तमोगुण में स्थित है? नहीं, शुरुआत में थोड़े तो लक्षण रह सकते, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं हम रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो जाते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समेतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो अगर हम अव्यभिचारी भक्ति करेंगे, अगर हम शुद्ध भक्ति करेंगे, माम च अव्यभिचारेण, तो अव्यभिचार, व्यभिचार यानी इधर उधर जाना, तो अव्यभिचारेण मतलब अनएडल्ट्रेटेड भक्ति। प्रभुपाद जी ने एक नया शब्द इंग्लिश में बड़ा अच्छा शब्द बनाया उन्होंने, अनअलॉयड डिवोशन सर्विस। आप अगर इंग्लिश में पढ़े होंगे, आपने देखे होंगे, अनअलॉयड, अलॉय मतलब क्या आप जानते हैं? अलॉय स्टील कहते हैं, जो लोहे में कुछ और मिलाना और कुछ धातु मिलाना, तो उसको कहते हैं अलॉय। अनअलॉयड माने कुछ मिलावट नहीं, तो बिना किसी मिलावट के भक्ति। अपने भक्ति में किसका मिलावट कर सकते हैं? भक्ति में हम कर्म और ज्ञान का मिलावट होता है। तो शुद्ध भक्ति यानी अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृत। जब अन्य अभिलाषा के साथ भक्ति करते हैं तो शुद्ध भक्ति नहीं कहलाता, वो फिर सकाम भक्ति कहलाते हैं, या ज्ञानोन्मुखी भक्ति हो गया, अगर उसमें ज्ञान का मिश्रण या कर्म का मिश्रण। कर्म यानी हम चाहते हैं हम कुछ कार्य करें और उसका हम भोग करें। तो कर्म और ज्ञान से मिलावट से भक्ति को बचाना है, वही शुद्ध भक्ति कहलाते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। रूप गोस्वामी ये भक्ति का डेफिनेशन, क्या कहेंगे हिंदी, भक्ति का परिभाषा देते हैं कि भक्ति क्या है। अन्याभिलाषिता शून्य, जो दूसरे अभिलाषा है, दूसरे जो इच्छाएं हैं उनसे मुक्त होके, ज्ञान कर्म से बच के, आनुकूल्येन कृष्णानु, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अनुकूल, कृष्ण के अनुकूल कार्यों को करना, यही है भक्ति। और जो ऐसा करते हैं वो कृष्ण को समझ पाएंगे, इनके अतिरिक्त और कोई समझ नहीं पाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है यहां जो कहा गया है कि भक्ति करने से हम रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा परिणाम श्री प्रभुपाद जी ने स्वयं सिद्ध किया। कैसे? उन्होंने जब प्रचार आरंभ किया तो जो बिल्कुल रजोगुण तमोगुण में डूबे हुए थे, हाँ, कैसे उनका प्रभुपाद जी ने उद्धार किया। और हम सब भी भक्ति माने के पूर्व सब रजोगुण तमोगुण में थे, लेकिन भक्ति करने मात्र से कैसे हम धीरे धीरे रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं, इसका उदाहरण श्री प्रभुपाद जी ने दिया। वास्तव में जो अरिरामिल की उपाख्यान पढ़ रहे हैं, इसमें यही तो है कि कैसे हरिनाम की महिमा, ये हरिनाम के द्वारा कैसे जीव सारे कलमोश से मुक्त हो जाता है और कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो हरिनाम की जो महिमा इस दो तीन अध्याय में हम पढ़ रहे हैं, तो इसको प्रैक्टिकली सिद्ध किया, इसको प्रूव किया, इसको स्थापित किया, किसने? श्रील प्रभुपाद जी ने, उनके जीवन, उनके प्रचार के द्वारा। पहले लोग जानते थे हरिनाम की महिमा, लेकिन कई बार संदेह होता था, अच्छा म्लेच्छ सेवन का भी उद्धार हो सकता है? हाँ, प्रभुपाद जी ने इसको सिद्ध करके दिखाया। कई बार प्रभुपाद जी से लोग सोचते ना कई बार कि बड़े बड़े महात्मा चमत्कार करते हैं, तो कई बार प्रभुपाद से पत्रकार एक बार पूछे कि प्रभुपाद आप कोई चमत्कार कर सकते हैं क्या? तो प्रभु, नहीं, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता। फिर प्रभुपाद जी बोले, नहीं, एक चमत्कार मैंने किया है कि मैंने हजारों म्लेच्छों और यवनों को ब्राह्मण बना दिया, शुद्ध वैष्णव बना दिया। तो बहुत बड़ा चमत्कार प्रभुपाद जी ने किया, हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आप में से कई लोग अच्छे परिवार से होंगे, लेकिन बिल्कुल पतित जो म्लेच्छ यवन, इतने पतित अवस्था में थे, जो हिप्पीज थे, आप कल्पना नहीं कर सकते, उनका उद्धार प्रभुपाद जी ने किया, ये वास्तव में विश्व के इतिहास में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और इस चमत्कार प्रभुपाद जी ने किसके माध्यम से किया? अस्त्र क्या था प्रभुपाद जी के साथ? हरिनाम। तो हरिनाम के प्रभाव से कैसे म्लेच्छों यवनों को कैसे प्रभुपाद जी ने वैष्णव बनाया, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। हम भी छोटे छोटे म्लेच्छ यवन सब थे, लेकिन जो वास्तव में पाश्चात्य देश में जाके जो बिल्कुल ही, आप प्रभुपाद लीला में पढ़ना चाहिए, कौन जो भी भक्त नहीं पढ़े हैं, मैं निवेदन करूंगा अवश्य प्रभुपाद लीला में पढ़िए, उसमें पता चलेगा कि प्रभुपाद जी ने कैसे लोगों का उद्धार किया, किस स्तर में वो थे। जो 24 घंटे नशा में डूबे थे, जो 24 घंटे अवैध कार्य करते थे, उनका उद्धार प्रभुपाद जी ने किया। तो ये प्रभुपाद जी की अटूट श्रद्धा थी हरिनाम पे कि प्रभुपाद जी ने ऐसा कर पाया। एक बार प्रभुपाद जी जब संन्यास लिए, आपको घटना पता है, प्रभुपाद जी संन्यास कहाँ पे लिए? मथुरा में केशव जी गौड़ी मठ में प्रभुपाद जी संन्यास लिए। और उस समय संन्यास उनको नारायण महाराज, उस समय उन्होंने संन्यास दिया। एक प्रभुपाद जी गुरु भाई थे अकिंचन कृष्णदास बाबा जी, जो बड़े शुद्ध भक्त थे और नाम के प्रति अटूट विश्वास था उनको। हर समय वो कृष्ण का नाम उच्चारण करते थे, हर समय हरे कृष्णा, उसके अलावा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हर किसी को देख के केवल हंस के मुस्कुरा के हरे कृष्णा बोलते, हर समय वो हरे कृष्ण का कीर्तन जप करते रहते थे। प्रभुपाद जी के बड़े प्रिय थे। जब बाद में प्रभुपाद जी प्रचार करके आए वृंदावन, तो प्रभुपाद से कई बार वो मिलते थे, प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते थे उनसे मिलके। तो जब प्रभुपाद जी अंत समय में यहाँ प्रभुपाद हाउस यहीं वृंदावन में जब शरीर छोड़ने वाले थे, तो उनके सब गुरु भाई आए उनसे मिलने, बौन महाराज जो सामने कॉलेज है, और अखिंचन कृष्णदास बाबा जी, और भी सब भक्तसन ठाकुर के और वरिष्ठ शिष्य आए उनसे मिलने। तो चर्चा हो रही थी, तो उस समय अखिंचन कृष्णदास बाबा जी ने कहा कि तुम सबको पता है कि ये स्वामी जी, ये भक्तिनंद स्वामी कैसे सफल हुए, और तो कोई सफल नहीं हो पाया। क्योंकि बौन महाराज को बोला, आप भी गए थे, बौन महाराज भी जर्मनी गए थे, विदेश गए थे प्रचार करने, कि तो आप भी सफल नहीं हो पाए हरिनाम के प्रचार में, और भी दो तीन शिष्य गए थे शिला भक्त संत ठाकुर के पाश्चात्य देश में प्रचार करने, लेकिन वो सब हाथ ऊपर कर दिए, बोले नहीं ये लोग वैष्णव नहीं बन सकते। लेकिन प्रभुपाद अखिंचन कृष्णदास बाबा जी ने कहा, लेकिन तुम्हें पता है ये प्रभुपाद, ये स्वामी जी कैसे सफल हुए, भक्तिनंद स्वामी प्रभुपाद? तो लोगों ने कुछ कुछ उत्तर दिया, लेकिन अखिंचन दास बाबा जी ने बोला मैं उत्तर देता हूं क्यों। फिर उन्होंने कहा कि जब इनका संन्यास हो रहा था जब प्रभुपाद जी का, तो मैं वहां पे था और मैं कीर्तन कर रहा था, और बगल में वो पुरोहित यज्ञ कर रहे थे, समंत्र का उच्चारण कर रहे थे। तो आप भी देखते हैं कई बार जब यज्ञ होता है, जो पुरोहित मंत्र उच्चारण करता है वो कीर्तन करता है, कई बार कहते नहीं नहीं कीर्तन बंद करो, ज्यादा जरूरी है मेरे सब मंत्र उच्चारण। तो वो पुरोहित भी ऐसे बोले कि कीर्तन थोड़ा बंद करो या धीरे करो, लेकिन प्रभुपाद जी पीछे से उनको इशारा दे रहे थे कीर्तन और तेज करो और करो। इधर से वो पुजारी कह रहे थे धीरे धीरे कीर्तन बंद करो, प्रभुपाद जी पीछे से और कीर्तन करो और कीर्तन करो। तो अखिंचन बाबा जी बोले मैं उस दिन समझ गया कि इनको हरिनाम पे इतना विश्वास है कि अवश्य सफल होंगे। तो ये घटना, ये सच यही प्रभुपाद हाउस में ये हुई। अखिंचन दास बाबा जी ने कहा कि इनको इतना अटूट विश्वास है हरिनाम पे कि मैं उसी दिन समझ गया ये अवश्य सफल होंगे। क्योंकि जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो क्या किए, आप प्रभुपाद लीला में पढ़ेंगे कि वो पार्क में बैठ के कीर्तन शुरू की। केवल हरिनाम के कीर्तन के माध्यम से ही जो वहां के युवा लोग थे, जो हिप्पी थे, वो आकर्षित हुए, और केवल कीर्तन द्वारा उनका हृदय शुद्ध बना धीरे धीरे। वो कुछ फिलोसफी कोई नहीं समझ पाया शुरू में, भगवद्गीता क्या है, भागवतम क्या है, अरे हर समय नशे के उसमें चुन दो, क्या पढ़ेंगे क्या सीखेंगे, कुछ नहीं समझ में आया उनको। वो केवल हरिनाम के द्वारा, प्रभुपाद जी की शुद्ध मुख से, शुद्ध भक्त के मुख से जब हरिनाम सुने और हरिनाम का कीर्तन किए। और प्रभुपाद जी घंटों कीर्तन करते थे, लीलामृत में देखेंगे जब क्लास भी होता तो कम से कम आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे। और पार्क में भी घंटों बैठ के प्रभुपाद जी, उस समय कोई साउंड सिस्टम नहीं, कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं, छोटे से एक तबला को लेकर प्रभुपाद जी, मृदंग भी नहीं, एक छोटा सा ड्रम टाइप का था, उसको लेकर प्रभुपाद जी घंटों और एक ही ट्यून में, कौन सा ट्यून में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी कई बार तात्पर्य में लिखते हैं, अच्छी बात है अगर अच्छे ट्यून में अच्छा गाना, लेकिन प्रभुपाद जी कहते ज्यादा हमें उस चक्कर में नहीं जाना चाहिए। आजकल जैसे कई बार ज्यादा फैशन हो गया, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो, बहुत सारे अच्छा अच्छा म्यूजिक बजाए, हरिनाम कीर्तन के लिए इसकी इतनी आवश्यकता नहीं, मेन शुद्धता होनी चाहिए। प्रभुपाद जी कोई बहुत अलग अलग ट्यून में या अलग अलग 10 इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं कीर्तन किए, केवल एक छोटा सा ड्रम के साथ, तो एक मृदंग करताल पर्याप्त है कीर्तन के लिए। प्रभुपाद जी कई पत्र में लिखते हैं अपने शिष्यों को, कई बार उनको कोई शिष्य पत्र लिखते हैं प्रभुपाद मैं म्यूजिक सीखूं क्या, प्रभुपाद बोले नो नीड, कोई म्यूजिशियन बनना आवश्यकता नहीं है कीर्तन करने के लिए। भक्त बनो। और भक्त जब कीर्तन करता है तो उसका ज्यादा प्रभाव होता है। तो प्रभुपाद जी ने यही किया, केवल वहां जाके कीर्तन किया, और उनके कीर्तन से जब भक्त लोग जुड़े तो वो धीरे धीरे शुद्ध बने और वैष्णव बने और कृष्ण को समझ पाए। तो इसका प्रैक्टिकल प्रूफ हमें मिलता है, जो शास्त्रों के वाणी हम देख रहे हैं कि हरिनाम की जो महिमा है उसको वास्तव में प्रभुपाद जी ने सिद्ध किया। अवश्य को चैतन्य महाप्रभु आए, हरिनाम का प्रचार किए, जगाई बधाई का उद्धार किए, लेकिन वो तो दो थे केवल, लेकिन प्रभुपाद जी ने तो हजारों जगाई बधाई का उद्धार किया, और आज भी चल रहा है। आज भी इस्कॉन के प्रभाव से कई लोग भक्त बन रहे हैं, कितने पापी उससे आके भी, लेकिन केवल हरिनाम के उच्चारण से, कीर्तन से भक्त बने। तो ये हरिनाम की महिमा है, और हरिनाम के जब कीर्तन से ही व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। तो प्रभुपाद जी जब आ रहे थे तो वो जो पानी के जहाज में जो उन्होंने कविता लिखी थी, आप सब सुने ही होंगे, बहुत ही सुंदर कविता है। बड़ो कृपा कैले कृष्णा अध मेरा प्रति की जाने आनियाएशो करे बेगति। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हे कृष्णा आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए। जब प्रभुपाद जी एक्चुअली कविता प्रभुपाद जी ने तब लिखा जब पहली बार वो अमेरिका पहुंचे, बॉस्टन बोल के जगह है, बॉस्टन हार्बर, वहां जब प्रभुपाद जी का शिप लैंड हुआ, जब उनका जहाज पहुंचा, तो पहली बार, उस समय तो इंटरनेट वगैरह था नहीं, आज तो हम देख सकते हैं भी अमेरिका का शहर कैसा है। प्रभुपाद जी को कुछ नहीं पता था कि अमेरिका में शहर कैसा होता है, वहां के लोग कैसे होते हैं। तो पहली बार वो अमेरिका की धरती को स्पर्श किए और देखे वहां के बॉस्टन शहर में, और जब वहां की हालत देखी प्रभुपाद जी, जगह जगह शराब की दुकान, मांस की दुकान, वेश्याघर, खैर आजकल तो इंडिया के शहर में हम सब देख सकते हैं, लेकिन उस समय 1965 में इंडिया के शहरों में इतना खुला ये सब पाप के कार्य नहीं होते थे। तो प्रभुपाद जी को एक सदमा लगा, रहे ऐसा शहर, लोग इतने पाप में डूबे हैं, इतने सारे कारें इधर उधर मोटर जा रही है, रजोगुण माने क्या, खूब मेहनत करो, और तमोगुण यानी शराब मांसाहार निवृत्ति करना। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि लोग दो ही गुण में है, खूब मेहनत करो और खूब इंद्र तृप्ति करो, रजोगुण और तमोगुण। तो प्रभुपाद जी इनको देख के बड़ा आश्चर्य से कृष्ण बोले, हे कृष्ण कहां मुझे लेके आए। ये जो लेके आया रजस तमो गुणेरा सभी आछन्न, ये सब रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से पूरी तरह ढके हुए हैं, कैसे उनका उद्धार होगा। लेकिन फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि तबे यदि तब कृपा होए अहेतु की, तो अगर आपकी कृपा होगी तो कुछ भी संभव है। तो इसलिए आप मेरी वाणी को ऐसा शक्ति दीजिए कि मैं उनको कृष्ण कथा सुना पाऊं, क्योंकि कृष्ण कथा में वो शक्ति है। फिर प्रभुपाद जी भागवत का श्लोक कहते हैं, भागवतर कथा से तब अवतार धीर हो या सुने जदि काने बार बार, सुनवताम सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्य भद्राणी विधुनोति सुरक्षिताम नष्ट प्राय स्वभद्रेशु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावा काम लोभादेशे चेतेतेर अनाविद्धम सित्वम सत्वे प्रसीदति। ऐसे वो पांच श्लोक श्रीमद् भागवतम का प्रभुपाद जी अपने कविता में लिखते हैं, और फिर कहते हैं कि अगर ये लोग कृष्ण कथा सुनेंगे और कृष्ण का नाम लेंगे तो अवश्य ही ये रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से बाहर आ जाएंगे और आपके भक्त बन जाएंगे। फिर बोलते हैं, आनी आछो जदि प्रभु हमारे नाचाइते, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ श्रीमते। हे प्रभु आप मुझे यहाँ ले पे आए हैं, मुझे आप नचाइए, जैसे आपके अच्छा मुझे वैसे नचाइए। काष्ठे रव पुटली जथा नाचाओ श्रीमते, भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब बड़ो, भक्ति वेदांत नाम इबे सार्थक करो। तो बहुत ही सुंदर कविता है, इससे प्रभुपाद जी के हृदय के भाव हमें पता चलता है। ये कविता प्रभुपाद जी ने इसलिए नहीं लिखा था, उनको नहीं पता था कि बाद में ये लोग पढ़ेंगे इसको, नहीं, प्रभुपाद जी अपने डायरी में अपने व्यक्तिगत भावों को प्रकट कर रहे थे। तो उनका क्या भाव था, किस तरह में भगवान को प्रार्थना की, हे कृष्ण आप मेरे वाणी को अलंकृत कीजिए, आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं भागवतम की वाणी उन तक पहुंचा पाऊं। उनको पूर्ण विश्वास था कि अगर एक बार वो लोग भगवान का नाम लेंगे और भागवत कथा सुनेंगे तो अवश्य उनका हृदय परिवर्तन होगा, वो भक्त बन जाएंगे। और इसी अटूट श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ प्रभुपाद जी प्रचार किए। और हम देख रहे हैं इसका परिणाम कैसे प्रभुपाद जी ने हजारों लोगों को वैष्णव बनाया, और आज भी जो प्रभुपाद जी के जो फॉलोअर्स हैं वो भी कैसे भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो एक्चुअली हम सबको जीवन में यही सिद्धांत अपनाना चाहिए कि हरि नाम के प्रति हमारा कैसे रुचि बढ़े, हम अपने जीवन में अच्छे से हरि नाम लें और दूसरों को प्रचार करें, दोनों आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को क्या कहा कि कई लोग आचार करते हैं नाम का लेकिन प्रचार नहीं करते, खुद तो बहुत अच्छे से नाम कीर्तन या भजन करते लेकिन दूसरों को प्रचार नहीं, भजनानंदी वो भी अच्छे हैं संत हैं, और कुछ लोग हैं जो प्रचार ही प्रचार करते लेकिन आचरण नहीं करते, तो दोनों ही बेकार है। आप नामाचारी इसलिए हो हरिदास ठाकुर क्योंकि आप नाम का आचरण और प्रचार दोनों करते हैं, आचार प्रचार दोनों करते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है, हम सब अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाना चाहिए कि हम हरि नाम का आचरण भी करें, हम अच्छे से नाम जप करें, कीर्तन करें और साथ में प्रचार करें, दोनों की आवश्यकता है, तब हमें कृपा मिलेगी और हमारा जीवन भी सफल होगा। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे वृंदावन में प्रभुपाद जी की इच्छा थी, कई जगह में प्रभुपाद जी ने कहा कि कीर्तन होना चाहिए 24 घंटे कीर्तन। एक बार गिरिराज महाराज कहते हैं कि बॉम्बे में भी प्रभुपाद जी ने एक बार आदेश दिया कि यहाँ पे 24 घंटे कीर्तन करो, तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी इतने तो भक्त नहीं है, बहुत सारी सेवाएं हैं, तो उन्होंने कहा कि एक दिन कर सकते हैं क्या? प्रभु बोले अच्छा ठीक है चलो एक दिन हफ्ते में करो, लेकिन उसके लिए भी गिरिराज महाराज जी कह रही थोड़ा काफी मुश्किल है एक दिन पूरा 24 घंटे करना, तो उन्होंने कहा अच्छा 12 घंटा कर सकते हैं, तो प्रभु जी कहा कम से कम 12 घंटा तो करो, तो संडे को 12 घंटा कीर्तन शुरू हुआ जुहू मंदिर में, और गिरिराज महाराज कहते हैं कि उस 12 घंटा कीर्तन के प्रभाव से कई सारे समस्या और दिक्कतों का समाधान हो गया। तो ये वास्तव में बहुत ही एक गुह्य वो है कि कई जो समस्याएं आती है केवल हरिनाम को अगर हम आश्रय लेंगे तो सारे समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पे 24 घंटा कीर्तन प्रारंभ कराया था वृंदावन में, फिर प्रभुपाद जाने के बाद कुछ समय तक बंद हो गया, लेकिन फिर आयेंद्र प्रभु आए, वो भी ऐसे शुद्ध वैष्णव है जिनको हरिनाम के प्रति बहुत श्रद्धा था, तो उन्होंने फिर प्रारंभ किया 24 घंटे कीर्तन। शुरुआत में इतने भक्त नहीं थे, ऐसा कहते हैं जो आयेंद्र प्रभु के साथ थे कि शुरुआत में कई कई रात वो अकेले कीर्तन करते थे, वो 24 घंटे को कभी उन्होंने भंग नहीं होने दिया, और आज इतना सुंदर चल रहा है 24 घंटा हरिनाम संकीर्तन। तो प्रभुपाद जी को पूर्ण विश्वास था हरिनाम पे, अंत समय प्रभुपाद जी प्रभुपाद हाउस में थे तो कुछ नहीं किए, बस भक्तों को बोले कि सब आओ और मुझे कीर्तन सुनाओ, तो वहां भी प्रभुपाद हाउस में भी ऐसे 24 घंटे कीर्तन शुरू हो गया। तो हम प्रभुपाद जी जीवन से देख सकते हैं कि उनको हरिनाम पे इतना अटूट श्रद्धा था, उन्होंने अपने जीवन में आचरण भी किया और फिर बाद में उसी का प्रचार किया, केवल यही सबसे बड़ा गुण था प्रभुपाद जी। बाकी प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर मैं मेरे जो गुरु भाई थे मेरे से कई ज्यादा शास्त्र में निपुण थे, बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने बस अपने गुरु महाराज की आज्ञा को पालन किया, मुझे उनपे आज्ञा के पूर्ण विश्वास था और हरिनाम पे पूर्ण विश्वास था कि हरिनाम के माध्यम से कैसे सबका हृदय परिवर्तन हो सकता है। तो हमें भी इसी का अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए। चैतन्य भागवत में भी महाप्रभु चैतन्य भागवत चैतन्य चैतन्य दोनों में तो केवल हरिनाम की महिमा हर जगह पाई जाती है, श्रीमद भागवतम में भी, लेकिन विशेष करके चैतन्य 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 भागवत में तो हमें हर प्रसंग में हरिनाम की महिमा का वर्णन है। तो एक बार जब महाप्रभु संन्यास लेने के पहले जस उसी महाप्रभु रात को घर छोड़ दिया, मकर संक्रांति के दिन रात को महाप्रभु ने गृह त्याग किया संन्यास लेने, तो उस दिन शाम को सारे वैष्णव आए महाप्रभु से मिलने, सबको पता नहीं था महाप्रभु संन्यास लेंगे लेकिन उनकी इच्छा मात्र से सब वैष्णव आए महाप्रभु से मिलने के लिए। सब आके महाप्रभु को अलग अलग उपहार दिए, फूल दिए, माला दिए, चंदन दिए, फिर महाप्रभु ने अपना माला सब भक्तों को वैष्णव को दिया, और फिर सबको महाप्रभु केवल दो या तीन श्लोक में शिक्षा देते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि बोलो कृष्ण भज कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिनु केहो किछु ना भावियोन। कहते हैं केवल कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण के बिना किसका और किसी का चिंता मत करो। फिर महाप्रभु बड़ा सुंदर वाणी कहते हैं, यदि आमा प्रति स्नेह थाके सबाकार तबे कृष्ण व्यतिरिक्त ना गई बेयर। एक बार गौर गोविंद महाराज के प्रवचन में मैं सुन रहा था ये, इसको कहते हैं बड़ा सुंदर वाणी है। महाप्रभु कहते हैं यदि आमा प्रति स्नेह थाके सबाकार, महाप्रभु कहते हैं अगर मेरे प्रति आपका स्नेह है, किसके प्रति महाप्रभु का, किसके किनका स्नेह है महाप्रभु के प्रति, हाथ ऊपर कीजिए। सबका स्नेह है, हम सब चाहते हैं महाप्रभु को। तो महाप्रभु कहते हैं अगर मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह है तो क्या करना पड़ेगा, तबे कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाई दया, तो कृष्ण के नाम के अलावा और कुछ मत गाना। की शयने की भोजने की बाजागरणे अहर्निश चिंत कृष्ण बलह वदने। महाप्रभु कहते हैं सोने समय, खाते समय, चलते समय, हर समय कृष्ण का नाम लो। यही मत शुभ दृष्टि करी सभाकार, उपदेश कही सबे बोले आओ घरे। फिर महाप्रभु बस इतना ही उपदेश दिया और बोले घर जाओ। देखिए महाप्रभु का उपदेश ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता था। दो दिन पहले जब यशोदिन प्रभु क्लास दिए तो उन्हें कहा कि महाप्रभु इतने बड़े विद्वान थे लेकिन कितना किताब लिखे महाप्रभु ने, कितने किताब लिखे, कोई किताब नहीं लिखा, केवल 8 श्लोक, क्योंकि 8 श्लोक में सारा सिद्धांत है। हरि नाम की महिमा है, शिक्षा अष्टकम क्या है, हरि नाम की महिमा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपदम पुण्यामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। दूसरा श्लोक भी नाम की महिमा, नाम नमकारी बहुधा। और तीसरे श्लोक में महाप्रभु कहते हैं क्या योग्यता है, इतना कुछ होते भी हम हरिनाम का उच्चारण क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम तीसरा श्लोक नहीं फॉलो कर पा रहे। त्रिनादपि सुनीचे न तररेव सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तने सदा। तो तीसरा श्लोक इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इसको हमें सब भक्तों को गले में पहनना चाहिए, श्लोक हर समय इसको याद रखना चाहिए। अगर हम इस श्लोक का अपने जीवन में इसको हम पालन करेंगे तब हम हरिनाम का हर समय उच्चारण कर सकते हैं। तो अगर हमें प्रभुपाद जी के प्रिय बनना है, महाप्रभु का प्रिय बनना है, तो हमके उनके आदेश पालन करना है, आचार और प्रचार दोनों करना है। किसका, हरिनाम का। तो हरिनाम का आचार प्रचार दोनों करना चाहिए। और हरिनाम जप करने के लिए जो योग्यता है वो त्रिनादपि सुनीचे न, तो इसके हमें जीवन में पालन करना है। तो आप सब आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी अपने जीवन में इसको पालन कर पाऊं। बोलना बहुत आसान है लेकिन अगर एक एक श्लोक अगर हम इसको पालन कर ले तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। त्रिनादपि सुनीचे न तरव सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तिन सदारी। कई बार हम प्रश्न पूछते हैं कि अरे अजामिल तो एक बार नाम लिया, हम इतनी बार लेते हैं लेकिन हम अपराध युक्त नाम लेते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, 10 नाम अपराध करते हैं तो क्या होगा। इसलिए हमारा होता है लाभ तो मिलता है लेकिन पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। तो इसलिए हमें इस श्लोक का जीवन में पालन करते हुए, अपराध से बचते हुए हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसे कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी, किसी का प्रश्न नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।